लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत युगांडा की धर्म बहन रोज मेरी निरुम्बे की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तरी युगांडा के गुलुई शहर में येसु के पौत्र हृदय धम्म समाज के सिस्टर रोस मेरी निरुम्बे और उनकी धम्म बहनें विद्रोहियों द्वारा हमला की गई महिलाओं की मदद करती हैं, जिन्हें खुद अपने ही लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। येसु के पौत्र हृदय को समर्पित धम्म संघ ने अपने इतिहास के शुरू से ही चुनौतियों का सामना किया है। इसकी स्थापना 1954 में दक्षिण सूडान में हुई थी। मात्र 10 साल बाद यह शरणार्थियों का समुदाय बन गया। देश में संघर्ष बढ़ने के कारण धर्म बहनों ने युगांडा भागने का निर्णय लिया और अपने साथ उन लोगों को भी ले गईं जिनकी वे देखभाल कर रही थीं, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे। यह एक खतरनाक कदम था जिसकी तुलना आज भी पौत्र परिवार के मिस्र भागने की घटना से की जाती है, जिसने कई बुलाहटों को जन्म दिया, जिसमें रोस मेरी भी शामिल थी, जिसने 14 वर्ष की आयु में अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लिया। सिस्टर रोस मेरी अपनी बुलाहट की कहानी बतलाते हुए कहती हैं, जब मैं बच्चों की देखभाल करने वाले कुछ धर्म बहनों की बातें सुनी तो मुझे लगा कि यह मेरे लिए सही जगह होगी, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं अपनी बड़ी बहन के बच्चों की देखभाल भी करती थी। मुझे यकीन था कि ईश्वर हमें वही करने के लिए बुलाते हैं जो हम कर सकते हैं, और मैं जो कर सकती थी वह जल्द ही सामने आ गया। अपनी धर्म बहनों के साथ मैंने उन युवतियों की देखभाल करने का फैसला किया जिन्हें विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था, उनका यौन शोषण किया था और उन्हें मारने के लिए भी तैयार थे। लेकिन बाद में उससे भी दर्दनाक कि उनके खुद अपने ही समुदाय के लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लोग उनसे डरते थे क्योंकि उनमें से कई के हाथों उनके प्रियजनों के खून थे। इसलिए सिस्टर ने दरवाजा खोला और कहा, हमारे पास आओ। सिस्टर रोस मेरी याद करती हैं कि उन्होंने उन्हें वैसा ही आमंत्रित किया जैसे मेहमानों को आमंत्रित कर रही हो। वे बतलाते हुए कहती हैं, मैंने स्थानीय रेडियो को एक संदेश भी भेजा, एक जोखिम भरा कदम उठाया क्योंकि विद्रोही इसे सुन सकते थे, लेकिन यह कदम उठाना जरूरी था। उनके निमंत्रण पर कई महिलाएं युवतियां अधिकतर अपने बच्चों के साथ आईं, जिन्हें प्यार नहीं मिला था और जो बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई थी। जब सिस्टर से पूछा गया कि क्या वे उन महिलाओं की देखभाल करने से नहीं डरी जिन्हें न केवल मनोवैज्ञानिक सहायता बल्कि चिकित्सा की भी आवश्यकता थी, तो सिस्टर रोस मेरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगा, मैं एक पेशेवर प्रसूति विशेषज्ञ हूँ। सिस्टर रोस मेरी ने सिलाई मशीन को महिलाओं के जीवन को फिर से जोड़ने और उनमें आशा के बीज बोने का एक साधन बनाया है। उनके विचार अत्यंत सरल हैं। वे कहती हैं, मशीन गनों को सिलाई मशीनों में बदलना और गुलाम रह चुकी महिलाओं को यह दिखाना कि जीवन जो बिखर गया है उससे फिर से किसी सुंदर और कीमती चीज में बदला जा सकता है, जैसे कपड़े के टुकड़ों को सुंदर हैंडबैग में बदला जा सकता है। देखो, यह कोका कोला ढक्कन से बना है। सिस्टर रोस मेरी ने एक छोटा बारीक सिला हुआ बैग दिखलाते हुए कहा, जिससे वह कभी नहीं छोड़ती। मैं महिलाओं से कहती हूँ, देखो ये बैग कितना सुंदर है, आपने लोगों द्वारा फेंके गए सामान को सावधानी से जोड़कर इन्हें इतना सुंदर बनाया है और आप भी सुंदर हो। शुरू से ही धम्म बहनों को इन महिलाओं की मदद करने के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा। सिस्टर रोज मैरी शहर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करने के दौरान कई विद्रोहियों को जानती थीं। वे कहती हैं, मेरा सबसे बड़ा डर था कि वे मुझे जानते थे और वे एक दिन मुझे मार डालेंगे। मैं लगातार प्रार्थना करती रही, ईश्वर अगर मैं एक दिन इन विद्रोहियों से मिलूं तो मुझे उनमें आपका चेहरा देखने में मदद कीजिए और उन्हें मुझ में आपका चेहरा देखने दीजिए। सिस्टर रोज मैरी की प्रार्थना सुन ली गई। एक दिन एक हथियारबंद व्यक्ति धम्म बहनों के घर आया। धम्म बहनें खाना बना रही थी, सिस्टर रोज मैरी वहीं थी। वह व्यक्ति उन्हें मार सकता था लेकिन उन पर हाथ नहीं उठाया बल्कि दवा और भोजन मांगा। सिस्टर रोज मैरी ने उसे दवा और भोजन दिया जो उसके पास था और उसे सड़क के दूसरे तरफ जाते हुए देखने के लिए रुक गई। वे उस दृश्य का वर्णन करते हुए बतलाती हैं, अचानक मैंने उसे वापस आते देखा और कहते सुना, तुम मेरे लिए इतने दयालु हो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे। फिर वह रसोई में गया और ओवन जिसे वे चालू करने ही वाले थे उसमें से विस्फोटक निकाला जिसे उसने छिपा कर रखा था। उसकी दयालुता ने हम सभी को बचा लिया। जब सिस्टर रोज मैरी से पूछा गया कि उन्होंने कितनी महिलाओं की मदद की है तो उन्होंने जवाब दिया, हजारों महिलाएं। एक कहानी है जो उन्हें खास तौर पर याद है। लड़की का नाम सूसन था। उसे विद्रोहियों ने उसकी सबसे छोटी बहन के साथ अगवा कर लिया था जिससे वह अपनी पीठ पर लेकर जा रही थी। जब वे नदी पार करने वाले थे तो उसने अपहरणकर्ताओं से मदद मांगी क्योंकि वह अपनी बहन को पीठ पर लेकर नदी पार नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने उससे चुनने के लिए विकल्प दिया, या तो वह अपनी जिंदगी चुने या अपनी बहन की। फिर उन्होंने उससे अपनी बहन को मारने के लिए कहा। उसने उससे मार डाला और वहीं छोड़ दिया और वे आगे बढ़ गए। सिस्टर रोज मैरी ने बताया कि वह सालों से सूसन की मदद कर रही है। वे कहती हैं, मैंने उससे दोस्ती की, हमेशा उसके करीब रही और उससे कहती रही, सूसन खुद को माफ कर दो, उन्होंने ऐसा करने के लिए तुम्हें मजबूर किया था और ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है। सिस्टर रोज मैरी ने इस बात पर जोर देते हुए पुष्टि की कि उनकी भूमिका हमेशा आशा बोने की रही है। संत मोनिका केंद्र युगांडा मिशनरी की एकमात्र गतिविधि नहीं है। सिस्टर रोज मैरी ने कहा, पिछले साल दिसंबर में मैंने दक्षिण सूडान में एक नई परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सड़कों पर रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों का पालन पोषण करना है। हमारे पास वहाँ 450 बच्चे हैं। हम उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और हम उन्हें एक ऐसी जगह देते हैं जहां वे खेल सकें। जब उनसे पूछा गया कि वे जिनकी सेवा करती हैं क्या उनसे ईश्वर के बारे में बात करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। क्या आप जानते हैं कि मैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी उपस्थिति उन्हें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ और अपनी उपस्थिति से ईश्वर का प्रचार करती हूँ। दिन रात सप्ताह के सातों दिन उनके साथ रहने के लिए आपको अपने दिल में ईश्वर को जगह देने की आवश्यकता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत युगांडा की मिशनरी सिस्टर रोज मैरी न्यूरुम्बे की कहानी सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका संघर्ष, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, परिवार में सास बहू का रिश्ता कई भावनाओं को समेटे हुए होता है। सास और बहू का रिश्ता सबसे अहम होता है और सबसे नाजुक भी। अगर यह रिश्ता अच्छा रहा तो बहू के लिए ससुराल में ढलना और खुशी से जीना आसान हो जाता है। ऐसा ना हो तो उसके लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर बहुएं इस बात की शिकायत करती हैं कि उन्हें सास से कभी माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, लेकिन इस दौरान वह इस बात पर ध्यान देना भूल जाती है कि क्या उन्होंने कभी उन्हें अपनी माँ का सम्मान दिया है। रिश्ते और प्यार को हमेशा ही निस्वार्थ कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि किसी भी रिश्ते में एक व्यक्ति जैसी भावनाएं सामने रखेगा, उसे बदले में भी वैसी ही भावनाएं मिलेंगी। अगर आपको बेटी जैसा प्यार चाहिए तो आपको माँ जैसा सम्मान भी देना होगा। आज की नाटिका में सारिका ने सास की जली कटी बातों पर ध्यान न दिया और माँ का दर्जा देकर सास का दिल जीत लिया। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका संघर्ष।
हे भगवान, मैं कब से सारिका सारिका चिल्ला रही हूँ। सारे जमाने ने सुन ली होगी, लेकिन इस महारानी के कान पर जू नहीं रेंग रही है।
मैंने आपकी आवाज सुन ली थी माँ, मैं बस आ ही रही थी। बोलो।
आ रही थी, वाह वाह, इसका झूठ तो देखो। अरे जब तूने मेरी आवाज सुन ली थी तो फिर तू आई क्यों नहीं?
मैंने कहा तो माँ, आपकी आवाज सुनकर मैं आ ही तो रही थी।
लो और सुनो इसकी, मेरे बेटे को जेल भिजवाकर अब इसका मुंह भी चलने लगा है।
जेल मेरी नहीं, ड्रग्स की वजह से गए हैं माँ। अगर आप उन पर शुरू से ही ड्रग्स ना लेने के लिए सख्ती करती तो ना तो ड्रग्स लेते और ना ही ड्रग्स रखने के जुर्म में ड्रग्स के साथ पकड़े जाते।
अरे वाह, वो ड्रग्स भी तो तेरे ही कारण लेता था ना?
वो मेरे कारण ड्रग्स नहीं लेते थे माँ, उनको तो लत थी ड्रग्स की।
तो फिर और किसके कारण लेता था वो? किसी ना किसी वजह से तो रोज परेशान किया करती थी उसे। अब वो ड्रग्स नहीं लेगा तो क्या करेगा?
ऐसी बात नहीं है माँ, वे तो शादी के पहले से ही ड्रग्स लेते थे। अब भी समय है माँ, अब भी उनकी ड्रग्स छूट सकती है। उनके जेल से आने के बाद अगर आप उनसे सख्ती से ड्रग्स छोड़ने को कहेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे ड्रग्स छोड़ देंगे।
वाह वाह, चालाकी तो देखो इस लोमड़ी की, वो नशा इसके ही कारण करे और ये उसको छुड़ाने के लिए मुझसे कहे। आहा, कितनी भोली है बेचारी।
आपसे इसलिए कह रही हूँ माँ, वो आपकी बात बहुत मानते हैं। आप इस बारे में एक बार उन पर सख्ती करके तो देखें।
अरे तू कौन होती है उस पर सख्ती कराने वाली? क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि मैं उस पर सख्ती करूँ?
काश आप मुझे समझ पाती और अपनी ये जिद भी छोड़ देती।
लो और सुनो इसकी, मेरा बेटा जेल में है तो ये मुझसे न जाने क्या क्या छुड़वाने और सख्ती करवाने में लगी है। अरे सख्ती तो तेरे साथ करनी चाहिए, तेरे साथ एक नहीं दो दो लड़कियां पैदा करके रखी है। एक लड़का तो पैदा कर ना सकी जो मेरे खानदान का नाम आगे बढ़ाता।
अब ये तो भगवान की इच्छा है माँ, हम इंसान के हाथ तो कुछ नहीं होता। अगर इंसान के हाथ ही सब कुछ होता तो क्या फिर किसी इंसान की आस अधूरी रहती?
वाह सारिका वाह, लगता है मैं तेरी नहीं तू मेरी सास है। जब से तू कमाने क्या लगी है तब से तो तू अपने आप को न जाने क्या समझने लगी है।
अब तो मैं अपने आप को आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं समझती हूँ माँ, अब तो आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे तो मजबूरी में कमाने जाना पड़ता है, ना कमाने जाऊँ तो हमारा और दोनों बेटियों का पेट कैसे भरूंगी।
ज्यादा चापलूसी ना कर मेरी, तू क्या समझती है? तेरी इस चापलूसी से खुश होकर मैं अपने बेटे पर सख्ती नहीं करने वाली, समझ लेना अच्छे से तू।
ऐसी बात नहीं है माँ, अगर वे आपके बेटे हैं तो मेरे भी तो पति हैं। मैं ना आपके लिए कुछ गलत सोच सकती हूँ और ना आपके बेटे के लिए। आप हमेशा मुझे गलत ही समझती हैं, मगर मैं गलत नहीं हूँ माँ। मैं सचमुच आपकी इज्जत करती हूँ और आपको अपनी माँ समझती हूँ।
चल चल अब बस कर। और वो दोनों लड़कियाँ कहाँ है? बहुत देर से न सिर्फ दिखाई पड़ रही है और उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है।
पड़ोस में खेल रही है।
जी नमस्ते, मेरा नाम राजीव शर्मा है।
नमस्ते, कहिए आपको किससे मिलना है?
जी मुझे सारिका मेहता जी से मिलना है।
जी मैं ही हूँ, कहिए।
जी मैं शहर की समाज सेवी संस्था संघर्ष से आया हूँ।
तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
देखिए मैं संस्था संघर्ष का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी संस्था मदर्स डे पर उन विशेष संघर्षशील माओं को शहर में सम्मानित करने जा रही है जिन्होंने अपने जीवन में कड़े संघर्ष के बाद भी अपने जीवन से हार नहीं मानी और लगातार अपने जीवन से जूझते रहे, कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का पालन आदर्श रूप से करते रहे हैं। साथ ही वर्तमान में भी उनके जीवन के विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते रहे हैं।
माफ कीजिए शर्मा जी, इसमें नया क्या है? संसार की सभी माएं अपने जीवन काल में अभावों और मुश्किलों से संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पालती है। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ।
मगर सविता जी, इस संसार की प्रत्येक औरत और प्रत्येक माँ की कहानी अलग है, उनका संघर्ष अलग है, उनके जीवन की कहानी अलग है।
फिर भी कहीं ना कहीं से आकर प्रत्येक नारी एक धारा में तो शामिल हो ही जाती है।
जी सही कहा आपने, और फिर मिलकर भी अलग हो ही जाती हैं, क्योंकि कुछ नारियां, कुछ माएं जीवन से हार मान लेती हैं, कुछ आपकी तरह जीवन की नाव को किनारे लगाने की खातिर लगातार संघर्ष करती रहती हैं आपकी तरह। बस उसी संदर्भ में हम आप जैसी अन्य माओं का सम्मान करने जा रहे हैं ताकि अन्य महिलाएं भी आपसे प्रेरणा ले सके।
यदि ऐसा ही है तो फिर आप तो मुझे क्षमा ही करें, क्योंकि किसी और नारी को मुझसे प्रेरणा लेने की जरूरत ही क्या है। नारी अपने आप में खुद एक प्रेरणा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेरणा को प्रेरणा की क्या जरूरत है।
सारिका जी, क्षमा चाहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी सास के द्वारा इतना अपमानित और इतना प्रताड़ित होने के बावजूद भी उनकी इतनी सेवा करती हैं, यह हमें जानकारियों से पता चला है सारिका जी। तो आप न केवल अन्य माओं के लिए बल्कि अन्य नारियों के लिए भी तो एक प्रेरणा स्रोत का ही तो काम कर रही हैं।
देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी सास के साथ बहुत मजे में हूं। दूसरा ये कि मैं उन्हें अपनी सास नहीं, अपनी माँ ही मानती हूं। अगर माँ बेटी के बीच कुछ अनबन या मन मुटाव हो भी जाता है माँ की ओर से, तो उससे आप लोगों को क्या समस्या है, ये हमारे घर की अपनी बात है। मेहरबानी करके मेरी माँ के बारे में बात करते समय उनकी गरिमा का ध्यान रखिए।
वास्तव में आप सम्मान के योग्य हैं सारिका जी। ये आपका निमंत्रण पत्र है, आप जरूर आइएगा। नमस्ते जी।
सचमुच मैं अब तक तुझे बहुत गलत समझ रही थी बेटा, आज तूने ये साबित कर दिया कि तू सचमुच में मुझे अपनी माँ मानती है। मैंने तेरी और उस शर्मा की सारी बातें सुनी है, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया है।
ये आप क्या कह रही हैं माँ, मैंने तो कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की।
दुख इसी बात का है बेटा, तू सब कुछ चुपचाप सहती रही। अगर तू एक बार भी मुझसे झगड़ लेती या विरोध में भला बुरा बोल देती ना, तो मुझे इतना अफसोस ना होता। मगर सब कुछ यूं खामोशी से सुनते जाना और अपना कर्तव्य पूरा करते जाना, सचमुच मुझे अभागी को तो देवी जैसी बहू और देवी जैसी बेटी मिल गई है।
माँ, आपने मुझे अपनी बेटी मान ही लिया है तो मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ?
हाँ बेटा, मांग जरूर मांग सकती है, मेरे पास हुआ तो ना नहीं कहूंगी।
उनकी जेल से छूटकर आने के बाद आप उनसे सख्ती से नशे से दूर रहने के लिए कहेंगी ना माँ?
हाँ बेटी, मैं उसे नशे से दूर रहने के लिए जरूर कहूंगी और सख्ती से ही कहूंगी बेटी। मैं अब उसका नशा छुड़वा कर ही रहूंगी। नशे ने तेरा घर बर्बाद कर दिया, मगर अब फिर से घर आबाद होगा। मैं इस घर से नशे का नाम और निशान मिटा दूंगी।
ओह माँ, आप कितनी अच्छी हैं।
मगर तुझसे कम हूँ बेटी।
संघर्ष। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे पूजा केलकर, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।